रात काफी गहरी हो चुकी थी। हवेली के बाहर सन्नाटा पसरा था और अंदर के कमरे एक एक करके शांत हो चुके थे। अक्षरा अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी, धीरे धीरे अपना मेकअप रिमूव कर रही थी। कॉटन पैड पर फैला काजल जैसे उसकी आंखों की थकान को भी साथ ले जा रहा था, लेकिन मन वो अब भी भरा हुआ था। इमरजेंसी है, उसने आईने में खुद को देखते हुए धीमे से दोहराया। बहुत बड़ी इमरजेंसी, उसने हल्का सा तंज कसा, लेकिन आवाज में दर्द ज्यादा था। वो कुर्सी पर बैठ गई, बाल खोल दिए और कुछ सेकंड आंखें बंद कर लीं। तभी ट्रिंग ट्रिंग फोन की आवाज ने उसकी सोच तोड़ दी। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। माँ? एक पल को उसने कॉल काटने का सोचा, लेकिन फिर गहरी सांस लेकर कॉल रिसीव कर ली। हेलो माँ। अक्षरा, उधर से तुरंत आवाज आई। कैसी है तू बेटा? उस आवाज में वही अपनापन था जो हर बार उसे थोड़ा कमजोर कर देता था। ठीक हूँ माँ, उसने नॉर्मल बनने की कोशिश की। ठीक है, माँ ने तुरंत पकड़ लिया, या बस कह रही है? अक्षरा चुप हो गई। तुम तो वहां जाकर हमें भूल ही गई हो बेटा, माँ ने हल्की शिकायत भरे लहजे में कहा। अक्षरा की आंखें भर आई। प्लीज माँ, ऐसा मत कहो, उसकी आवाज हल्की सी कांप गई। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। माँ तुरंत सतर्क हो गई। क्या हुआ, सब ठीक है ना? बस यही वो पल था जहां अक्षरा खुद को रोक नहीं पाई। उसने सब कुछ बता दिया, रेस्टोरेंट, विश्वनाथ का अचानक जाना, उसका बदलता व्यवहार और वो अजीब सा खालीपन। फोन के उस पार कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर माँ ने धीरे से कहा, तू अभी भी उससे उतना ही? हाँ माँ, अक्षरा ने बिना सोचे तुरंत कहा। उसकी आवाज में इस बार कोई झिझक नहीं थी, शायद उससे भी ज्यादा। उसने गहरी सांस ली। माँ, अगर उस वक्त पापा ने मेरी और विश्वनाथ की शादी होने दी होती ना, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, तो आज ये सब नहीं होता। कमरे में सन्नाटा फैल गया। उम्र में बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, अक्षरा ने आगे कहा, आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। वो हल्का सा हंसी, लेकिन वो हंसी टूटी हुई थी। आप खुद देखो ना माँ, वो कितना हैंडसम है और उस पर से करोड़पति, ऐसा इंसान बार बार नहीं मिलता। उसने आईने में खुद को देखा, आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी जिद थी। मैंने सोच लिया है, उसने साफ शब्दों में कहा, अब मैं विश्वनाथ से शादी करके ही रहूंगी। फोन के उस पार माँ चुप थी, शायद सोच रही थी या शायद समझ रही थी। माँ, अक्षरा ने फिर कहा, आप बस इतना कर दो, पापा को मना लो, उन्हें यहाँ जयपुर ले आओ और आंटी जी से मेरा रिश्ते की बात कर लो। उसकी आवाज़ अब धीमी थी, लेकिन हर शब्द भारी था। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, एक पल रुककर उसने और भी धीरे से कहा। और माँ, ये सही वक्त है, 3 महीने हो गए हैं उसकी पत्नी को घर छोड़े, वो कितना अकेला महसूस करता होगा। फोन के उस पार लंबी खामोशी छा गई। फिर माँ की आवाज़ आई, धीमी, लेकिन इस बार पहले से अलग। ठीक है, अक्षरा की सांस जैसे थम गई। सच? हाँ, माँ ने कहा, मैं बात करूंगी तेरे पापा से। लेकिन अक्षरा, उन्होंने थोड़ा सख्त होकर कहा, ये फैसला बहुत बड़ा है, तो पूरी तरह सोच समझ कर। मैंने सोच लिया है माँ, अक्षरा ने बीच में ही रोक दिया। इस बार उसकी आवाज़ बिल्कुल साफ थी, पहली बार मैं अपने दिल की सुन रही हूँ। माँ ने गहरी सांस ली। ठीक है, फिर हम जल्दी ही आते हैं, कॉल कट। कमरा फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार अक्षरा के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, जैसे उसने आखिरकार अपने मन की बात कह दी हो। वो धीरे से बिस्तर पर लेट गई, आंखें बंद की और पहली बार उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अगली सुबह हवेली में हलचल थोड़ी जल्दी शुरू हो गई थी। रत्ना देवी हॉल में बैठी थी, हाथ में चाय का कप, लेकिन नजरें दरवाजे पर। तभी अक्षरा तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरी। आंटी, उसने पास आकर कहा। हाँ बेटा, रत्ना देवी ने उसकी तरफ देखा। वो आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, रत्ना देवी थोड़ी चौंकी। अचानक? जी, अक्षरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ जरूरी बात करनी है। रत्ना देवी ने उसे गौर से देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ। फिर उन्होंने बस सिर हिला दिया। ठीक है। कुछ ही देर में दरवाजे के बाहर कार आकर रुकी। नौकर ने दरवाजा खोला और अंदर आए अक्षरा के मम्मी पापा, साफ सुथरे कपड़े, लेकिन चेहरे पर हल्की सी झिझक। अक्षरा तुरंत उनकी तरफ बढ़ी। माँ, पापा, वो दोनों के पास जाकर खड़ी हो गई। रत्ना देवी भी उठकर खड़ी हो गई। नमस्ते, उन्होंने संयमित स्वर में कहा। अक्षरा के पापा ने एक पल के लिए उन्हें देखा, फिर अचानक वो आगे बढ़े और हाथ जोड़ दिए। हमें माफ कर दीजिए रत्ना जी, उनकी आवाज़ भारी थी। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। अक्षरा भी चौंक गई। पापा? लेकिन उन्होंने उसकी तरफ नहीं देखा। उनकी नजरें सिर्फ रत्ना देवी पर थीं। हमें हीरे की परख नहीं थी। हमने उस वक्त बहुत बड़ी गलती कर दी। रत्ना देवी कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रहीं, जैसे इस पल को समझने की कोशिश कर रही हों। अक्षरा की माँ भी आगे आई। सच में हमने बिना सोचे समझे फैसला लिया और शायद आज उसकी कीमत सब दे रहे हैं। कमरे का माहौल एकदम भारी हो गया। हर कोई बस एक दूसरे को देख रहा था। तभी सीढ़ियों की तरफ से पायल की हल्की सी आवाज आई। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? सबकी नजरें एक साथ मुड़ी। सुषमा देवी वहां खड़ी थी, चेहरे पर सवाल और हल्की सख्ती। अक्षरा एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए आगे बढ़ी। मौसी जी, ये मेरे मम्मी पापा हैं। सुषमा देवी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीमे कदमों से आगे आई। अच्छा, उन्होंने संयमित स्वर में कहा, लेकिन अचानक आने की वजह, अक्षरा ने गहरी सांस ली। अब वो पल आ ही गया था। मौसी जी, ये लोग रिश्ता लेकर आए हैं। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। रत्ना देवी ने तुरंत सुषमा देवी की तरफ देखा, जैसे उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। रिश्ता? सुषमा देवी की भौंहें हल्की सी कुड़ी। किसका रिश्ता? अक्षरा की उंगलियां हल्का कांप गईं, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं। मेरा और विश्वनाथ का। ये सुनते ही जैसे वक्त एक पल के लिए थम गया। सुषमा देवी के चेहरे पर साफ हैरानी थी और आंखों में गहरी सोच। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो अक्षरा? उनकी आवाज अब थोड़ी भारी हो गई थी। अक्षरा ने सीधा उनकी आंखों में देखा। जी मौसी जी, पूरी तरह। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें अजीब सी मजबूती थी। मैं विश्वनाथ से प्यार करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ। उसके मम्मी पापा चुपचाप खड़े थे, लेकिन इस बार पीछे नहीं हटे। रत्ना देवी ने गहरी सांस ली और धीरे से सोफे पर बैठ गई। हॉल में हर किसी की धड़कन जैसे सुनाई दे रही थी। अब फैसला सिर्फ एक बात पर टिका था। विश्वनाथ क्या चाहता है?